नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की ताकत बनने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारत 2047 तक दुनिया के शीर्ष 10 समुद्री व्यापारी देशों में शामिल होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अमरीकी डॉलर से प्रतिस्पर्धा के लिए नई ब्रिक्स मुद्रा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं। विद्रोही सेना ने सीरिया के प्रमुख शहर होम्स पर कब्जे के बाद राजधानी दमिश्क को घेरना शुरू किया। और ओमान के मस्कत में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के अभियान की ऊर्जा शक्ति बनने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने विकसित भारत युवा नेता संवाद आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को विचारों के आदान प्रदान का मंच देगा।
युवा विचारों को नए अवसर देने के लिए कुछ ही सप्ताह बाद जनवरी में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, उसका भी आयोजन होगा। इसमें हमारे युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने आइडियाज देंगे, अपने योगदान की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप सभी युवा कार्यकर इससे भी जुड़ सकते हैं।
प्रधानमंत्री कल शाम अहमदाबाद में बोचा सणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के स्वयं सेवकों के निस्वार्थ सेवा के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यकर सुवर्ण महोत्सव को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देशवासी कई राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।
आज जब देश विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन हो, नेचुरल फार्मिंग हो या पर्यावरण को लेकर जागरूकता की बात हो, बेटियों की शिक्षा हो या आदिवासी कल्याण का विषय हो, देश के लोग आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पूरे विश्व में लोकप्रिय हुआ है और ये पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने भुज भूकंप, केरल बाढ़, उत्तराखंड भूस्खलन और कोविड संकट के दौरान निस्वार्थ सेवा के लिए संस्था के स्वयंसेवकों की सराहना की। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत वर्ष 2047 तक विश्व के शीर्ष 10 समुद्र तटीय बंदरगाह गतिविधियों वाले देशों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत बंदरगाहों में माल ढुलाई के लिए कार्गो प्रबंधन क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। श्री सोनोवाल कल चेन्नई में कामराजार पोर्ट ट्रस्ट के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कामराजार बंदरगाह पर 545 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कैपिटल रेजिंग, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की आधारशिला भी रखी। श्री सोनोवाल दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के 83वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अमरीकी डॉलर से प्रतिस्पर्धा के लिए नई ब्रिक्स करेंसी शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कतर में दोहा फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी डॉलर को कमजोर करने का ब्रिक्स देशों का कोई इरादा नहीं है।
इंडिया हैज नेवर बीन फॉर डी डॉलराइजेशन। राइट नाउ देयर इज नो प्रपोजल टू हैव अ ब्रिक्स करेंसी। वेयर इंडिया इज कंसर्न सर्टेनली, आई मीन लुक, द यूनाइटेड स्टेट्स इज आवर लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। वी हैव नो इंटरेस्ट इन वीकनिंग द डॉलर एट ऑल।
डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर ब्रिक्स देश एकमत नहीं है। एक सप्ताह पहले ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साझा करेंसी योजना शुरू करने पर ब्रिक्स देशों को 100% सीमा शुल्क लगाने की चेतावनी दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर मनामा संवाद में भाग लेने के लिए कल रात बहरीन की राजधानी मनामा पहुंचे। बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायानी ने श्री जयशंकर की अगवानी की। एक रिपोर्ट।
दोहा की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दोहा फोरम 2024 में मायूबी संघर्षों के समाधान के लिए मध्यस्थता शीर्षक से चर्चा में भाग लिया। उन्होंने लाल सागर में बढ़ते तनाव और एशियाई जहाजरानी मार्ग पर उसके असर पर चिंता व्यक्त की और भारतीय हितों पर इसके प्रत्यक्ष प्रभावों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री और नॉर्वे के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में इसराइल और ईरान के बीच जारी तनाव और वैश्विक संघर्षों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ गजा और सीरिया में जारी संघर्ष और द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ भी बैठक की। बहरीन में श्री जयशंकर चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित मनामा संवाद की 21वीं कड़ी में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को संरक्षित करना है। 3 दिन के इस कार्यक्रम का समापन आज होगा। एक रिपोर्ट।
इस महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध मूगा और एरी सिल्क को समर्पित मंडप का निर्माण किया गया है। मेले में बनाया गया ग्राम हाट बाजार आकर्षण का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के 320 किसान और कारीगर अपनी उत्पाद और कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक तकनीकी सत्र को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को अपनी विशेषताओं को निखारने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में मदद कर रही है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
The Northeast states come together and work as a team. And it's very, very crucial for donor ministry to play that facilitation role of bringing us together and making sure that we work together as a team. So therefore, it's a great initiative.
Ashtalakshmi Mahotsav na keval kshetr ki sanskritik sundarta ko pradarshit kar raha hai, balki arthik avsar bhi uplabdh kara raha hai. Adarsh ke saath, Saklan Akhtar, Akashwani Samachar, Delhi.
सीमा सुरक्षा बल आज जोधपुर में 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। पहली बार जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सीमांत मुख्यालय स्थापना दिवस परेड की मेजबानी कर रहा है। ये वर्ष सीमा सुरक्षा बल का हीरक जयंती वर्ष भी है। एक रिपोर्ट।
सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण मैदान में आयोजित होने वाले समारोह में देश भर के जवान हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में जवान अपनी क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। महिला टुकड़ी भी परेड में शामिल होगी। इसके साथ ही 7 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य परेड में स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव व MI-17 भी शामिल होंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रमुख उद्योगपति, राजनयिक, व्यापार प्रतिनिधि और निवेशक भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस की 3 दिन की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वे मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बिलेसोव के साथ सेना और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता सैन्य और औद्योगिक सहयोग सहित दोनों देशों के रक्षा संबंधों की समीक्षा भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज मुंबई में नॉर्वे के राजदूत में एलिन स्टेनर के नेतृत्व में नॉर्वे के उद्योग प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के बीच हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा होगी। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि दूरदर्शन का वेब OTT प्लेटफॉर्म परिवार के हर सदस्य के लिए स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराएगा। अहमदाबाद दूरदर्शन केंद्र के दौरे में उन्होंने कहा कि वेब OTT प्लेटफॉर्म से दर्शकों को दूरदर्शन के पुराने शास्त्रीय और लोकप्रिय कार्यक्रमों का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा।
दूरदर्शन ने अपना OTT वेव्स अभी लॉन्च किया है। उसका मुख्य आधार है कि हम एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर साफ सुथरा मनोरंजन आम जन को देना चाहते हैं और इस पहली बार किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे न्यूज चैनल्स को भी जोड़ा गया है।
सीरिया में विद्रोही सेना ने प्रमुख शहर होम्स पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क को घेरना शुरू कर दिया है। विद्रोहियों ने सरकारी सेना के खिलाफ हमला तेज कर दिया है और एक दिन में ही चार शहरों पर कब्जा कर लिया है। इस बीच सीरिया राष्ट्रपति कार्यालय ने राष्ट्रपति बशर अल असद के दमिश्क छोड़ जाने की खबरों का खंडन किया है। और अब खेल समाचारों के साथ है निखिल कुमार।
ओमान के मस्कत में हो रहे जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। प्रतियोगिता में कल ग्रुप ए के मुकाबले में चीन ने बांग्लादेश को 19-0 से पराजित किया, वहीं मलेशिया ने थाईलैंड को 3-0 से हराया था। ग्रुप बी में जापान ने श्रीलंका को 15-0 से शिकस्त दी। प्रतियोगिता में शेष पांच पर रहने वाली टीमें अगले वर्ष चिली में होने वाले FIH जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। वहीं क्रिकेट में एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत आज अपनी दूसरी पारी में आगे खेलना शुरू करेगा। भारतीय टीम ने कल स्टंप्स के समय 5 विकेट पर 128 रन बना लिए थे। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 29 रन पीछे है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय ऋषभ पंत और निशित रेड्डी क्रीज पर थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 337 रन का स्कोर खड़ा किया और भारत पर 157 रन की बढ़त बनाई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता फिर खराब श्रेणी में आ गई है। आज सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 263 दर्ज किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पबद्ध हैं
और इसी संकल्प को मजबूती देते हुए आइए 15 दिसंबर 2024 तक अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करवाएं।
समय समय पर ये हमारे द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स ही है जो देश के विकास कार्यों के लिए निरंतर धन की आपूर्ति करता है, बिना रुके बिना थमे।
कंपनीज, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करने की अंतिम तारीख है 15 दिसंबर 2024।
अधिक जानकारी और आयकर जमा करने के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें।
प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार मैसेज की निगरानी पर लाएगी नए नियम, नवभारत टाइम्स में प्रमुखता से है। पत्र के अनुसार किसी व्यक्ति के मैसेज की निगरानी अब अधिकतम 6 महीने तक की जा सकेगी। भारत की पहल पर 21 दिसंबर को मनाया जाएगा विश्व ध्यान दिवस, हिंदुस्तान सहित अधिकतर अखबारों में है। पत्र के अनुसार भारत के विशेष प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। हवाई अड्डों पर लागू होंगे विश्व स्तरीय सुरक्षा मानक, अमर उजाला की खबर है। पत्र के अनुसार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण इकाई की स्थापना की, अनुभवी टीम की रहेगी नजर। दैनिक भास्कर की पहली खबर है हिमाचल और उत्तराखंड में शुरू नहीं हुई बर्फबारी, कश्मीर लद्दाख में औसत भी नहीं। पत्र ने इसे बर्फ का सूखा बताते हुए लिखा है कि गंगा से लगे पहाड़ों पर बर्फ का स्तर पिछले साल की तुलना में 40% से कम। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की जन्म शताब्दी पर 135 थिएटर पर फिर रिलीज होगी राज कपूर की 10 सुपरहिट फिल्में, राजस्थान पत्रिका में प्रमुखता से है। पत्र कहता है ये उत्सव 13 से 15 दिसंबर तक रहेगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की ताकत बनने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा भारत 2047 तक दुनिया के शीर्ष 10 समुद्री व्यापारी देशों में होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अमरीकी डॉलर से प्रतिस्पर्धा के लिए नई ब्रिक्स मुद्रा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं। विद्रोही सेना ने सीरिया के प्रमुख शहर होम्स पर कब्जे के बाद राजधानी दमिश्क को घेरना शुरू किया। और ओमान के मस्कत में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।